नमस्ते, मैं आरफ हूँ। नाइन नॉट ली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एडन मेडेना की पुस्तक साइबरनेटिक रेवोल्यूशनरीज, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स इन आयंदिस चिले, इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली गहन शोध परक कृति है। इसका केंद्र प्रोजेक्ट साइबरसिन है, जिसे 1970 के दशक के आरंभ में सल्वादोर अयंदे की समाजवादी चिली सरकार ने विकसित किया। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीयकृत उद्योगों से तेजी से जानकारी लेकर उत्पादन, आपूर्ति और संकटों के प्रशासन में सहायता करना था। मेडेना इसे किसी ऐसे कंप्यूटर की कहानी नहीं बनाती जो देश चलाता था। इसके बजाय वो दिखाती है कि तकनीकी डिजाइन के भीतर लोकतंत्र, श्रमिक भागीदारी, प्रबंधन, राज्य की भूमिका और समाजवाद को लेकर अलग अलग राजनीतिक धारणाएं समाई थीं। पुस्तक स्टेफर्ड बियर के प्रबंधन साइबरनेटिक्स, चिली के इंजीनियरों और अधिकारियों, टेलेक्स संचार नेटवर्क तथा प्रसिद्ध ऑपरेशंस रूम को व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में रखती है। अभिलेखीय दस्तावेजों और साक्षात्कारों पर आधारित यह अध्ययन बताता है कि तकनीक कभी तटस्थ उपकरण नहीं होती। वह अपने समय की संस्थाओं, संघर्षों और सार्वजनिक आकांक्षाओं से आकार लेती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रोजेक्ट साइबरसिन का लक्ष्य था राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था में त्वरित समन्वय। साइबरसिन का जन्म अयंदे सरकार के उस प्रयास से जुड़ा था, जिसमें प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से चिली की अर्थव्यवस्था को बदला जा रहा था। तेजी से बढ़ते सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र का प्रशासन केवल पारंपरिक कागजी रिपोर्टों और धीमी नौकरशाही के सहारे कठिन था। परियोजना ने कारखानों से उत्पादन, कच्चे माल और संचालन से जुड़ी सूचनाएं टेलेक्स के माध्यम से सैंटियागो तक भेजने की योजना बनाई। इसका मूल उद्देश्य हर स्थानीय निर्णय को राजधानी के हाथ में लेना नहीं था। विचार यह था कि नियमित संचालन कारखाना स्तर पर चलता रहे, जबकि असामान्य विचलन या गंभीर बाधा दिखने पर उचित स्तर पर हस्तक्षेप हो। मेडेना का विश्लेषण इस अंतर को महत्वपूर्ण बनाता है। साइबरसिन को केंद्रीकृत आदेश तंत्र मानना अधूरा है, क्योंकि उसके डिजाइन में स्थानीय स्वायत्तता और समग्र निगरानी दोनों को संतुलित करने की कोशिश थी। फिर भी इस संतुलन को व्यवहार में लागू करना राजनीतिक रूप से सरल नहीं था। राष्ट्रीयकरण ने श्रमिकों, प्रबंधकों, सरकारी संस्थाओं और विपक्ष के बीच अधिकारों को लेकर नए तनाव पैदा किए। इसलिए सूचना का प्रवाह केवल तकनीकी प्रश्न नहीं रहा। वह यह भी तय करता था कि किसे उत्पादन की समस्या पर बोलने, समझने और निर्णय में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। पुस्तक आर्थिक नियोजन को अमूर्त सिद्धांत की बजाय संस्थागत समन्वय की व्यावहारिक चुनौती के रूप में सामने रखती है। दूसरा, स्टेफर्ड बियर की प्रबंधन साइबरनेटिक्स ने नियंत्रण को आदेश नहीं, प्रत्युत्तर के रूप में देखा। पुस्तक का बौद्धिक आधार ब्रिटिश साइबरनेटिशियन स्टेफर्ड बियर के प्रबंधन संबंधी विचारों में है। साइबरनेटिक्स सामान्यतः जटिल प्रणालियों में संचार, प्रत्युत्तर और नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ी है। बियर ने इन सिद्धांतों को कंपनियों और बड़े संगठनों के प्रबंधन में लागू करने का प्रयास किया। उनके लिए प्रभावी नियंत्रण का अर्थ ऊपर से लगातार आदेश देना नहीं, बल्कि ऐसी संरचना बनाना था जो बदलती परिस्थितियों की जानकारी शीघ्र ग्रहण करे और उसी अनुपात में प्रतिक्रिया दे। साइबरसिन में यही सोच उत्पादन संबंधी संकेतकों, विचलन की पहचान और संकट तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था में दिखाई देती है। मेडेना सावधानी से बताती है कि यह विचार तकनीकी दक्षता भर का प्रस्ताव नहीं था। बियर और चिली के सहयोगियों के सामने प्रश्न था कि क्या आधुनिक प्रबंधन उपकरण समाजवादी, लोकतांत्रिक और मानवीय उद्देश्यों के साथ जोड़े जा सकते हैं। इसीलिए परियोजना में मनुष्य को मशीन से हटाने के बजाय निर्णय प्रक्रिया में बेहतर जानकारी देने की भाषा प्रमुख थी। लेकिन पुस्तक इस दृष्टि की सीमाएं भी स्पष्ट करती है। किसी प्रणाली की गुणवत्ता केवल उसके मॉडल या संचार गति से तय नहीं होती। आंकड़ों का चयन, संकेतकों की व्याख्या और हस्तक्षेप का अधिकार हमेशा संस्थागत शक्ति से जुड़े रहते हैं। इस तरह मेडेना साइबरनेटिक्स को ना तो मुक्ति का स्वतः सिद्ध साधन मानती है, ना दमन का पर्याय। वह उसे राजनीतिक विकल्पों से निर्मित क्षेत्र के रूप में पढ़ती है। तीसरा, टेलेक्स नेटवर्क और ऑपरेशंस रूम तकनीकी संसाधनों की स्थानीय सीमाओं के अनुकूल बने। साइबरसिन की चर्चा अक्सर उसके भविष्यवादी ऑपरेशंस रूम के कारण होती है, जिसमें घुमावदार कुर्सियां, बाहों पर नियंत्रण पैनल और आंकड़े दिखाने वाली स्क्रीन थी। मेडेना इस दृश्य आकर्षण को व्यापक तकनीकी ढांचे से जोड़ती है। 1970 के दशक के आरंभ में चिली में कंप्यूटिंग संसाधन सीमित थे और आधुनिक कंप्यूटर टर्मिनलों का व्यापक जाल उपलब्ध नहीं था। इसलिए परियोजना ने मौजूद टेलेक्स अवसंरचना का उपयोग करके विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा। यह निर्णय दिखाता है कि नवाचार हमेशा नवीनतम मशीन खरीदने से नहीं आता, कई बार उपलब्ध साधनों को नए संगठनात्मक उद्देश्य के लिए पुनर्व्यवस्थित करना अधिक निर्णायक होता है। केंद्रीय कंप्यूटर तक भेजी जाने वाली सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए यह भी तय करना पड़ता था कि कौन से आंकड़े आवश्यक हैं, उन्हें कितनी आवृत्ति से भेजा जाए और चेतावनी किस स्थिति में उत्पन्न हो। ऑपरेशंस रूम इसी सूचना को सामूहिक विचार विमर्श के लिए दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की कल्पना था, न कि किसी स्वचालित शासक मशीन का कक्ष। पुस्तक यह डिजाइन की राजनीति पर खास ध्यान देती है। कमरे की संरचना, स्क्रीन पर जानकारी का रूप और औपचारिक मेज की अनुपस्थिति जैसे तत्व निर्णयकर्ताओं के परस्पर संबंधों की एक विशेष कल्पना प्रकट करते हैं। तकनीकी इंटरफेस इस दृष्टि से प्रशासनिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला माध्यम भी है। चौथा, लोकतांत्रिक समाजवाद के भीतर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का तनाव परियोजना की मुख्य चुनौती था। मेडना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में यह दिखाना शामिल है कि साइबरजिन का डिजाइन चिली के लोकतांत्रिक समाजवाद की वास्तविक दुविधाओं से अलग नहीं था। आयंदे सरकार उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बचाना और सामाजिक परिवर्तन आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह निर्वाचित व्यवस्था के भीतर काम कर रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर संकटों की जानकारी और संसाधनों का समन्वय आवश्यक था। फिर भी अत्यधिक केंद्रीकरण श्रमिक भागीदारी और स्थानीय निर्णय की आकांक्षा के विरुद्ध जा सकता था। साइबरजिन ने इस विरोधाभास को समाप्त नहीं किया, उसने उसे तकनीकी ढांचे में संभालने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, असाधारण समस्या पर ऊपर तक संकेत भेजने की अवधारणा रोजमर्रा के काम को हर समय केंद्रीय नियंत्रण के अधीन रखने से अलग थी, पर व्यवहार में इस सीमा को कौन तय करेगा, यह विवादास्पद प्रश्न था। कारखाना प्रबंधक, सरकारी योजनाकार, तकनीकी विशेषज्ञ और श्रमिक अलग प्राथमिकताएं रख सकते थे। पुस्तक इसलिए यह उपयोगी चेतावनी देती है कि भागीदारी केवल सूचना स्क्रीन उपलब्ध कराने से नहीं आती, उसके लिए निर्णयाधिकार, पारदर्शी प्रक्रियाएं और संस्थागत प्रतिनिधित्व भी चाहिए। यह विश्लेषण आज के डेटा आधारित प्रशासन और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए भी प्रासंगिक है। किसी डैशबोर्ड की क्षमता बढ़ने पर भी यह प्रश्न बना रहता है कि वह किसकी समस्या को दिखाई देने योग्य बनाता है, किसकी आवाज को मापता है और अंतिम निर्णय किसके पास रहता है। अंत में, साइबरजिन का अंत बताता है कि राजनीतिक परिवर्तन तकनीकी प्रणालियों के उद्देश्य भी बदल देता है। साइबरजिन को उसके अधूरेपन के बावजूद समझना जरूरी है, क्योंकि उसका अंत किसी तकनीकी विफलता का अकेला परिणाम नहीं था। आयंदे सरकार को तीव्र घरेलू विरोध, आर्थिक कठिनाइयों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना पड़ा। 1973 के सैन्य तख्ता पलट ने उस राजनीतिक परियोजना को ही समाप्त कर दिया जिसके लिए साइबरजिन बनाया गया था। बाद की सैन्य सरकार में राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर उत्पादन बढ़ाने वाले इस तंत्र में उपयोगी भविष्य नहीं दिखा। आगे चलकर निजीकरण, सार्वजनिक व्यय में कटौती और नवउदारवादी नीतियों की दिशा ने साइबरजिन के समाजवादी नियोजन उद्देश्य को अप्रासंगिक बना दिया। मेडना का निष्कर्ष यह नहीं कि बेहतर तकनीक तख्तापलट या राजनीतिक हिंसा रोक सकती थी, बल्कि वह दिखाती है कि तकनीकी प्रणालियां संस्थागत गठबंधनों और राजनीतिक मूल्यों पर निर्भर होती है। वही संचार नेटवर्क और विश्लेषणात्मक औजार अलग शासन में अलग अर्थ ले सकते हैं। पुस्तक इस कारण तकनीकी इतिहास को केवल आविष्कारों की क्रमिक सूची से अलग करती है। वह बताती है कि किसी परियोजना की उपलब्धि उसके पूर्ण संचालन तक सीमित नहीं होती। साइबरजिन ने यह ठोस प्रयोग प्रस्तुत किया कि सीमित संसाधनों में भी सूचना प्रौद्योगिकी को बाजार आधारित प्रशासन के अलावा अन्य सामाजिक लक्ष्यों के लिए सोचा जा सकता है। साथ ही उसका इतिहास चेतावनी देता है कि तकनीकी कल्पना को टिकाऊ बनाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में, साइबरनेटिक रेवोल्यूशनरीज उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कंप्यूटिंग के इतिहास, लैटिन अमेरिकी राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, समाजवाद या विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन में रुचि रखते हैं। डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन और संगठनात्मक डैशबोर्ड पर काम करने वाले पाठकों को भी यह पुस्तक एक जरूरी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देती है। इसका व्यावहारिक लाभ किसी तैयार प्रबंधन मॉडल में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्नों में है। किसी सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है? आंकड़े किसके हितों को दर्शाते हैं? स्थानीय स्वायत्तता कैसे बचाई जाएगी? और संकट की पहचान के बाद जवाबदेही किसकी होगी? ये प्रश्न आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक की बौद्धिक शक्ति इस बात में है कि वह साइबरजिन को न तो असफल भविष्यवादी रोमांच के रूप में सीमित करती है, न सर्वशक्तिमान कंप्यूटर राज्य की मिथक कथा बनाती है। मेडना तकनीकी उपकरणों, डिजाइन प्रक्रियाओं, आर्थिक नीतियों, वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक संघर्ष को एक ही विश्लेषण में रखती है। इसी कारण यह सामान्य कंप्यूटर इतिहास से अलग दिखती है, जहां अक्सर मशीनों और आविष्कारकों पर अधिक ध्यान रहता है। यह सामान्य राजनीतिक इतिहास से भी अलग है, क्योंकि यहाँ तकनीकी डिजाइन को ऐतिहासिक साक्ष्य और राजनीतिक विचार के रूप में गंभीरता से पढ़ा गया है। पाठक को चिली के एक विशिष्ट, संक्षिप्त और अधूरे प्रयोग की जानकारी मिलती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ईदन मेदिना, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।